एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम दर्शन शास्त्र की दुनिया की एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो जितनी पतली है उतनी ही गहरी और शायद थोड़ी विवादास्पद भी। मैं बात कर रही हूँ लुडविग विटगेंस्टाइन की ट्रैक्टसेस लॉजिको फिलोसॉफिकस की।
नमस्कार। और हाँ, ये किताब सिर्फ दार्शनिकों के लिए ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आज के जमाने में आप देखिए, जहाँ हम सूचना और राय और बातों के समंदर में,
बिल्कुल,
तो विटगेंस्टाइन की ये कोशिश कि भाई भाषा की हदें क्या हैं, हम क्या साफ साफ कह सकते हैं और कब चुप लेना बेहतर है, ये सोचना मुझे लगता बहुत जरूरी हो जाता है।
सही बात है।
ये किताब असल में यही पूछती है कि सोचा क्या जा सकता है और कहा क्या जा सकता है, और क्या इन दोनों के बीच कोई सीमा है।
बिल्कुल। और इस किताब के पीछे जो शख्स है लुडविग विटगेंस्टाइन, वो भी कोई आम दार्शनिक नहीं थे। जरा सोचिए, ऑस्ट्रिया हंगरी के उस समय के सबसे अमीर परिवारों में से एक में पैदा हुए। और पहले क्या पढ़ा? इंजीनियरिंग। हवाई जहाजों में दिलचस्पी थी उनकी।
हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प रास्ता है, इसी इंजीनियरिंग और गणित से होते हुए वो लॉजिक यानी तर्क के बुनियादी सवालों तक पहुंचे।
अच्छा,
फिर क्या था, इंजीनियरिंग छोड़ दी, 1911 में पहुंच गए कैम्ब्रिज, बर्ट्रेंड रसेल जैसे आप जानते हैं उस वक्त के दिग्गज दार्शनिक के पास। उनका नजरिया एकदम अलग था, उसमें एक इंजीनियर जैसी प्रेसिजन की चाह थी, एक लॉजिक वाले की तरह अमूर्त ढांचों की समझ, और साथ में एक बहुत गहरी, मतलब लगभग बेचैन कर देने वाली निजी शिद्दत। वो फिलॉसफी को कोई दिमागी खेल नहीं मानते थे, उनके लिए ये जीवन मरण का सवाल था।
और ये बात तो और भी हैरान करती है कि ट्रैक्टेटर्स उनके जीवन काल में छपी अकेली किताब है, और उसका भी बड़ा हिस्सा उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई के मोर्चे पे लिखा था।
हाँ, ये सोचना ही अजीब लगता है।
आप सोच सकते हैं उस माहौल ने, उस चरम स्थिति ने किताब की भाषा को कितना कितना तीखा, संक्षिप्त और एकदम सारगर्भित बना दिया होगा। वहां शायद छोटी छोटी बातों की जगह ही नहीं थी, सीधे जीवन और मृत्यु के अर्थ जैसे सवालों से जूझना।
सही कहा। और वो उस दौर के थे जब दर्शन में भाषाई मोड़ आ रहा था। मतलब ये सोच के दर्शन के ज्यादातर समस्याएं असल में भाषा की समस्याएं हैं। फ्रेगे और रसेल जैसे लोग लॉजिक के नए नए औजार बना रहे थे। विटगेंस्टाइन ने उन्हीं औजारों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बहुत ही क्रांतिकारी मकसद से, लॉजिक के जरिए ही सारे दार्शनिक भ्रमों को जड़ से खत्म कर देना।
वाह।
और कमाल की बात यह कि किताब छपने के बाद उन्हें सच में लगा कि बस फिलॉसफी की जो मुख्य समस्याएं थी वो सब हल हो गईं।
सच में?
हाँ,
उन्हें ऐसा लगा।
हाँ, और इसी यकीन के चलते वो 10 साल से ज्यादा के लिए फिलॉसफी छोड़कर चले गए। गांव के स्कूल में टीचर बन गए, माली का काम किया, यहाँ तक कि एक घर भी डिजाइन किया अपनी बहन के लिए।
अरे वाह, ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि वो अपने निष्कर्षों को लेकर कितने गंभीर थे। हालांकि बाद में वो लौटे फिलॉसफी में और अपने ही शुरुआती विचारों को चुनौती दी, वो एक अलग कहानी है। खैर,
बिल्कुल। चलिए अब जरा इस किताब पर आते हैं, ट्रैक्टेटस। आखिर ये है क्या बला? जैसा आपने कहा, छोटी पर बहुत सघन। इसका मुख्य लक्ष्य है भाषा, विचार और जो असली दुनिया है उसके बीच का रिश्ता समझना, और सबसे बढ़कर ये तय करना कि हम क्या चीज समझदारी से कह सकते हैं और कहां हमारी भाषा एक तरह से जवाब दे जाती है, कहां हमें चुप हो जाना चाहिए।
तो विटगेंस्टाइन का ये मानना था कि सदियों से दार्शनिक जिन बातों पर बहस करते आए हैं, जैसे सत्य क्या है, न्याय क्या है, सुंदरता क्या है, ये सब असल में दुनिया के बारे में अलग अलग राय नहीं है।
नहीं, उनका कहना था ये भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा हुए भ्रम हैं।
अच्छा, मतलब भाषा को गलत काम में लगा दिया।
हाँ, बिल्कुल। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चलाने के मैनुअल से खाना बनाना सीखने लगे तो गड़बड़ तो होगी।
हाँ हाँ, सही उदाहरण है।
तो वो दिखाना चाहते थे कि अगर हम ये समझ जाएं कि भाषा असल में करती क्या है, उसका सही काम क्या है, तो ये सारी जो गहरी दार्शनिक समस्याएं हैं वो खुद बखुद गायब हो जाएंगी धुएं की तरह।
तो ये किताब एक तरह से दिमाग की सफाई का मैनुअल है।
हाँ, कह सकते हैं एक लॉजिकल सफाई। शुरुआत होती है दुनिया के बनावट से, विटगेंस्टाइन कहते हैं, और ये पहला मुख्य प्रस्ताव है, दुनिया वो सब कुछ है जो वस्तु स्थिति है, प्रोपोजिशन 1।
वस्तु स्थिति है, इसका क्या मतलब हुआ? चीजें नहीं?
हाँ, यही तो क्रांतिकारी बात है। दुनिया चीजों का ढेर नहीं है, मेज, कुर्सी, पेड़ इनका जोड़ नहीं, बल्कि तथ्यों का जोड़ है। जैसे पेड़ हरा है, मेज कमरे में है, ये तथ्य हैं।
अच्छा, तो फोकस चीजों पर नहीं, उनके बीच के रिश्तों पर है।
बिल्कुल, उनके आपसी रिश्तों और व्यवस्था पर, दुनिया की संरचना पर। और फिर वो बताते हैं कि हमारी भाषा कैसे इस दुनिया से जुड़ती है, यही उनका वो मशहूर पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग आता है।
हाँ, पिक्चर थ्योरी, मैंने सुना इसके बारे में।
वो कहते हैं कि भाषा दुनिया की तस्वीरें बनाती है। एक वाक्य, एक प्रोपोजिशन तभी सार्थक होता है जब वो दुनिया में किसी संभव स्थिति या तथ्य की तस्वीर पेश करें।
जैसे बिल्ली चटाई पर है।
हाँ बिल्कुल, ये वाक्य एक संभावित तस्वीर बनाता है, जैसे हम जाकर देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि ये सच है या झूठ।
लेकिन ये तस्वीर कोई असली फोटो जैसी तो नहीं होगी?
नहीं नहीं, फोटो जैसी नहीं, बल्कि एक लॉजिकल तस्वीर। जैसे किसी शहर का नक्शा होता है ना, वो शहर की गलियों और इमारतों के आपसी रिश्ते को दिखाता है, उनके लॉजिकल स्ट्रक्चर को।
समझ रही हूँ।
वैसे ही एक वाक्य चीजों के आपसी लॉजिकल रिश्ते को दिखाता है, और इसका नतीजा, जैसा आपने कहा, काफी सख्त है। विटगेंस्टाइन के हिसाब से केवल वही बातें, वही वाक्य अर्थपूर्ण हैं जो तथ्यों की ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जिन्हें हम सिद्धांत रूप में सही या गलत ठहरा सकते हैं।
यानी मोटे तौर पर विज्ञान की बातें।
हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों की बातें।
तो फिर नैतिकता की बातें, कला की, धर्म की, आत्मा परमात्मा, इन सब का क्या? क्या ये सब गलत है?
गलत नहीं, विटगेंस्टाइन कहते हैं ये निरर्थक हैं।
निरर्थक? मतलब बकवास?
बकवास शायद थोड़ा ज्यादा कठोर हो जाएगा। निरर्थक का मतलब है कि हमारी भाषा का जो ढांचा है वो इस तरह की चीजों को बयान करने के लिए बना ही नहीं है। ये वाक्य दुनिया के तथ्यों की तस्वीरें नहीं बनाते, ये दुनिया के अर्थ या उसकी सीमाओं या मूल्यों के बारे में कुछ कहने की कोशिश करते हैं।
जो भाषा की पकड़ से बाहर है।
एग्जैक्टली, जो भाषा की पकड़ से बाहर है। और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आता है जब विटगेंस्टाइन अपनी यही आलोचना अपनी ही किताब ट्रैक्टेटस पर लागू कर देते हैं।
क्या, अपनी ही किताब पर?
हाँ, वो कहते हैं कि इस किताब में जो वाक्य लिखे हैं वो भी अंततः निरर्थक हैं, ये एक सीढ़ी की तरह हैं।
सीढ़ी?
हाँ, आप इसे चढ़कर दुनिया को सही नजरिए से देख लें और फिर इस सीढ़ी को हटा दे, फेंक दे, इसकी जरूरत नहीं है। किताब का मकसद कोई नया सिद्धांत देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी समझ तक पहुंचना है जहां आप जान जाएं कि क्या कहा जा सकता है और जो नहीं कहा जा सकता उसके बारे में।
चुप रहना ही सही है।
चुप रहना ही सही है, एक तरह की प्रबुद्ध शांति।
कमाल है। तो ये जो पूरी इमारत खड़ी की है उन्होंने, ये 7 मुख्य प्रस्तावों पर टिकी है, प्रोपोजिशन 1 से 7 तक।
हाँ बिल्कुल, बाकी सब इन्हीं का विस्तार है या इन्हीं को समझाने की कोशिश है। हमने पहले प्रस्ताव की बात की, दुनिया तथ्यों का जोड़ है, चीजों का नहीं। ये हमें दुनिया को देखने का एक नया फ्रेमवर्क देता है, चीजों से हटकर रिश्तों और संरचना पर फोकस।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा प्रस्ताव प्रोपोजिशन 2 इसी को और खोलता है। जो वस्तु स्थिति है, यानी एक तथ्य, वो स्थितियों, स्टेट्स ऑफ अफेयर्स का होना है। मतलब तथ्य और भी ज्यादा बुनियादी चीजों से बने हैं जिन्हें वो स्थितियां, सचवार हाल्ट कहते हैं।
स्थितियां?
हाँ, ये चीजों का सबसे सरल, सबसे बुनियादी संभव मेल है। जैसे मान लीजिए शतरंज के मोहरों की एक खास जमावट, और ये स्थितियां बनी हैं वस्तुओं से जो दुनिया के सबसे बुनियादी अविभाज्य कण हैं।
अच्छा, जैसे परमाणु?
हाँ, एक तरह से लॉजिकल परमाणु, यही विटगेंस्टाइन का लॉजिकल एटमिज्म है। दुनिया परमाणु तथ्यों से बनी है जो खुद सरल वस्तुओं से बने हैं, जैसे पदार्थ परमाणुओं से बना है।
समझ गई। फिर आता है तीसरा प्रोपोजिशन 3, तथ्यों की तार्किक तस्वीर एक विचार है। यहाँ दिमाग और दुनिया जुड़ते हैं।
बिल्कुल, हमारे विचार असल में दुनिया की संभावित स्थितियों की मानसिक तस्वीरें हैं। फिर से, ये लॉजिकल तस्वीरें हैं, कोई फोटो नहीं।
मतलब हमारे विचारों का ढांचा भी वैसा ही होना चाहिए जैसा उस सच्चाई का ढांचा है जिसे वो दर्शा रहे हैं।
हाँ, हम ऐसी चीजें भी सोच सकते हैं जो असल में नहीं है पर हो सकती थी, यानी विचार संभावित स्थितियों को दर्शाते हैं।
ठीक है, और चौथा प्रस्ताव इसे भाषा से जोड़ता है। एक विचार एक अर्थपूर्ण प्रस्ताव है।
हाँ, ये किताब का कह सकते हैं दिल है। एक वाक्य प्रोपोजिशन हमारे विचार की बाहरी अभिव्यक्ति है, यही पिक्चर थ्योरी पूरी तरह से लागू होती है।
तो एक वाक्य का अर्थ सेंस तभी होता है जब वो किसी संभव स्थिति की तस्वीर बनाता हो।
एग्जैक्टली, हम वाक्य को तब समझते हैं जब हम जानते हैं कि अगर ये सच होता तो दुनिया कैसी दिखती। वाक्य सच है या झूठ, इससे उसके अर्थ पे फर्क नहीं पड़ता, वो बाद की बात है। जरूरी चीज है लॉजिकल फॉर्म, वाक्य और स्थिति के बीच एक जैसा तार्किक ढांचा होना, जैसे नक्शे और इलाके के बीच होता है।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बात दुनिया की कोई तस्वीर नहीं बना रही तो वो बस
निरर्थक है?
हाँ,
विटगेंस्टाइन के हिसाब से वो निरर्थक है, अनसेंसिकल, मतलब वो भाषा के खेल के नियमों के हिसाब से खेली ही नहीं जा रही, जैसे आप हथौड़े से गाना गाने की कोशिश करें। हथौड़ा बुरा नहीं है, गाना बुरा नहीं है, पर मेल गलत है। पांचवां प्रस्ताव फिर ये बताता है कि कैसे सरल वाक्यों से जटिल वाक्य बनते हैं, और या नहीं अगर तो जैसे लॉजिकल शब्दों का इस्तेमाल करके।
अच्छा, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह।
हाँ बिल्कुल, ये फिर से उसी एटमिज्म वाली बात को पक्का करता है। सारी सार्थक भाषा सरल बुनियादी वाक्यों से बनी है जो सीधे परमाणु तथ्यों की तस्वीरें हैं।
अब आता है छठा प्रस्ताव।
हाँ, ये प्रोपोजिशन 6
जो मुझे थोड़ा डरावना लग रहा था। उसमें वो अजीब से चिन्ह थे, पी बार, क्साई बार, एन क्साई बार, ये क्या है?
हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा तकनीकी लगता है, पर हमें उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। उसका मुख्य निचोड़ ये है कि ये किसी भी सार्थक वाक्यों का एक आम ढांचा, एक जनरल फॉर्म बताने की कोशिश है।
अच्छा,
और इसी से विटकिंस्टाइन वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, भाषा की सीमा।
क्या सीमा?
नतीजा ये निकलता है कि जो वाक्य इस ढांचे में फिट नहीं होते वो असल में सार्थक वाक्य है ही नहीं। यहाँ वो दो तरह की बातों को अलग करते हैं। एक तो है तर्कशास्त्र के वाक्य, जैसे या तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही है।
हाँ, ये तो हमेशा सच होता है।
बिल्कुल, इन्हें वो अर्थहीन, सिन लॉसन कहते हैं, मतलब ये दुनिया के बारे में कुछ नया नहीं बताते। दूसरी तरफ है नैतिकता, सौंदर्य और तत्वमीमांसा की बातें, इन्हें वो निरर्थक, अनजिनिगन कहते हैं।
निरर्थक?
हाँ, क्योंकि ये भाषा के नियमों का ही उल्लंघन करते हैं, ये तथ्यों की तस्वीर बनाने की कोशिश ही नहीं करते।
लेकिन अगर नैतिकता पर बात करना ही निरर्थक है तो फिर सही गलत का क्या मतलब रहा? ये तो बड़ी अजीब बात लगती है।
अजीब लगती है सही का, पर निरर्थक का मतलब यहाँ बेकार या फालतू नहीं है। विटकिंस्टाइन ये नहीं कह रहे कि नैतिकता जरूरी नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि भाषा का जो काम है तथ्यों को बयान करना, नैतिकता, सुंदरता, जीवन का अर्थ, ये चीजें उस काम के दायरे में नहीं आती।
तो फिर
इनका क्या करें?
यहीं पर उनका वो कहना बनाम दिखाना,
सेइंग वर्सेस शोइंग वाला विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
कहना बनाम दिखाना।
हाँ, हम इन चीजों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तथ्यात्मक रूप से बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें जीवन में खुद को दिखाती हैं। जैसे किसी की ईमानदारी या साहस उसके कामों से दिखता है, आप उसे महसूस करते हैं। किसी पेंटिंग की सुंदरता उसे देखकर महसूस होती है, आप उसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकते।
अच्छा, तो ये दिखाई देती है, कहीं नहीं जाती।
बिल्कुल, और इसी समझ पर पहुंचकर आता है सातवां और आखिरी प्रस्ताव, प्रोपोजिशन 7, जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते, उसके बारे में हमें चुप रहना चाहिए।
वो मशहूर पंक्ति।
हाँ, और ये हार मानना नहीं है या ज्ञानता का बयान नहीं है, ये गहरी समझ और सम्मान का प्रतीक है। ये पहचानना कि भाषा एक बेहतरीन औजार है, पर हर काम के लिए नहीं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम अनुभव करते हैं, जीते हैं, दिखाते हैं, पर शब्दों में बांध नहीं सकते। ये उस रहस्यमयी के लिए जगह बनाता है। दुनिया का होना ही अपने आप में एक रहस्य है।
तो इस पूरी थोड़ी मुश्किल लेकिन दिलचस्प यात्रा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या टेकअवेज हैं?
मेरे ख्याल से पहली तो यही पिक्चर थियरी है कि सार्थक भाषा दुनिया का एक लॉजिकल लक्ष्य है। दूसरी, भाषा की सीमाएं, कि हमारी भाषा ही हमारी सोच और हमारी दुनिया की हदें तय करती है। मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं।
हाँ, ये बहुत गहरी बात है।
तीसरा, वो जरूरी फर्क कि कुछ चीजें कही नहीं जा सकती, सिर्फ दिखाई जा सकती हैं, नैतिकता, सुंदरता, अर्थ। और चौथा, दर्शन का काम दुनिया के बारे में नए तथ्य खोजना नहीं, बल्कि भाषा के जालों को सुलझाकर सवालों को ही भंग कर देना है, एक तरह की थेरेपी।
और क्या मुख्य बातें हैं? मुझे लगता है एक वो लॉजिकल एटमिज्म का विचार भी अहम है, कि दुनिया और भाषा दोनों की बुनियाद में सरलतम इकाइयां हैं।
हाँ बिल्कुल, परमाणु तथ्य और प्राथमिक प्रस्ताव, ये समानता ही भाषा को दुनिया दर्शाने लायक बनाती है।
और छठा, उस रहस्यमय या अकथनीय का सम्मान जो भाषा की पकड़ से बाहर है। ये जरूरी है कि हर चीज को शब्दों में डालने की कोशिश न की जाए।
सही कहा। और आखिर में वो सबसे क्रांतिकारी विचार कि ये किताब खुद एक सीढ़ी है जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक देना है। दर्शन सिद्धांतों का कोई खजाना नहीं, बल्कि स्पष्ट का पाने की एक गतिविधि है, एक सफर है।
इस किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो वाकई दिमाग में अटक जाती हैं, जैसा आपने कहा भी, जैसे वो पहली ही बात, दुनिया तथ्यों की समग्रता है, चीजों की नहीं, 1.1। ये तुरंत हमारा ध्यान चीजों से हटाकर उनके रिश्तों और संरचना पर ले जाती है।
हाँ, और वो लाइन, मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं, 5.6, ये कितना सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो सोच सकते हैं या कह सकते हैं वो हमारी भाषा के ढांचे से कितना बंधा हुआ है। शायद हम वो सोच ही नहीं सकते जिसके लिए हमारे पास शब्द या संरचना नहीं है।
एक और जो मुझे बहुत स्पष्ट लगी, एक प्रस्ताव वास्तविकता की एक तस्वीर है जैसा कि हम उसकी कल्पना करते हैं। ये सीधे सीधे पिक्चर थ्योरी को सामने रखती है। समझने का मतलब है ये जानना कि वाक्य किस स्थिति को दर्शा रहा है, चाहे वो सच हो या न हो।
और हाँ, वो सीढ़ी वाली बात, सीढ़ी चढ़ने के बाद उसे फेंक देना चाहिए, ये किताब की विनम्रता भी दिखाती है और उसके मकसद को भी। विटगेंस्टाइन कोई गुरु नहीं बनना चाहते थे, वो बस रास्ता साफ करना चाहते थे।
और अंत में जाहिर है, जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते उसके बारे में हमें चुप रहना चाहिए। ये एक तरह का शांत, गहरा और सम्मानजनक निष्कर्ष है, अज्ञानता का नहीं बल्कि समझ का।
अच्छा, ये सब तो हो गई दार्शनिक गहरी बातें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या फायदा, कहाँ काम आ सकते हैं ये?
मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा संचार में स्पष्टता लाने में हो सकता है। अगर हम लगातार खुद से पूछें, मैं जो कह रही हूँ या जो सुन रही हूँ, क्या वो किसी ठोस, जांची जा सकने वाली स्थिति की तस्वीर बना रहा है?
हाँ, ये हमें फालतू के शब्द जाल या गोलमोल बातों से बचाता है। जैसे ऑफिस में अक्सर होता है, कोई कहता है हमें सिनर्जी का लाभ उठाकर परिणामों को ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल,
विटगेंस्टाइन की तरह सोचने वाला पूछेगा, भाई साहब ठीक है, पर असल में करना क्या है, कौन से काम और नतीजा क्या नापेंगे, कौन से आंकड़े देखेंगे?
बिल्कुल, और ये समस्याओं को सुलझाने के बजाय भंग करने में भी मदद कर सकता है। जैसा आपने कहा था, कई बार बहसें तथ्यों पर नहीं होती बल्कि शब्दों की अलग अलग समझ पर अटकी होती हैं।
हाँ, जैसे दो लोग सम्मान या निष्पक्षता पर बहस कर रहे हों, पर दोनों के लिए उन शब्दों का मतलब ही अलग हो। अगर वो मतलब साफ हो जाए तो शायद बहस की जरूरत ही ना रहे।
ये रोजमर्रा के झगड़ों से लेकर बड़ी सामाजिक बहसों तक में काम आ सकता है, शब्दों को साफ करना।
हाँ, और आजकल की मीडिया और सूचना की दुनिया में ये आलोचनात्मक सोच के लिए एक बेहतरीन औजार है। कोई भी दावा सुने या पढ़ें, खबर हो, विज्ञापन हो, तो पूछें, क्या ये कोई तथ्य बता रहा है जिसकी तस्वीर बन सकती है? क्या इसे गलत साबित किया जा सकता है, या ये सिर्फ भावनाएं जगाने की कोशिश है, या कोई नैतिक या निरर्थक दावा है जिसे तथ्य की तरह पेश किया जा रहा है?
जैसे कोई विज्ञापन कहे, ये क्रीम आपको खुश कर देगी।
हाँ,
ये कोई तथ्यात्मक दावा नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुशी जैसी भावना को उत्पाद से जोड़ने की एक प्रेरक कोशिश है। ये हमें सूचना और हेरफेर के बीच फर्क करने में मदद करता है।
और एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो है उन चीजों की कद्र करना सीखना जो कहीं नहीं जाती। आज जब हर तरफ डेटा, फैक्ट्स और लगातार बातचीत का इतना शोर है, ये किताब याद दिलाती है कि जीवन की शायद सबसे गहरी चीजें, प्यार का एहसास, कला का अनुभव, किसी रिश्ते की गहराई, किसी की नेकी, ये शायद शब्दों में पूरी तरह नहीं समाती।
सही बात है, उन्हें महसूस किया जाता है, जिया जाता है, दिखाया जाता है। ये हमें अनुभव, अंतर्ज्ञान और हाँ, मौन के मूल्य की याद दिलाता है।
और साथ ही एक बौद्धिक विनम्रता भी। ये मानना कि हमारी भाषा और हमारे तर्क की सीमाएं हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और हर चीज को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। मुझे नहीं पता कहने में सहज होना।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सहार या सबक यही है कि हमारी भाषा, जो सोचने का हमारा मुख्य औजार है, वो कितनी ताकतवर है, लेकिन उसकी सीमाओं को जानना, ये समझना कि वो कहाँ खत्म होती है, शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये कहने और दिखाने का फर्क मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है, खासकर उन चीजों के बारे में जो हमारे लिए वाकई अहम है पर जिन्हें हम पूरी तरह बयान नहीं कर पाते, शायद कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।
और मेरे लिए ये विचार के दर्शन एक तरह की दिमागी सफाई या थेरेपी हो सकता है। ये काफी आकर्षक है। यह हमें निरर्थक सवालों में, शब्दों के जाल में उलझने से बचाकर दुनिया को ज्यादा साफ नजर से देखने में मदद कर सकता है। विटगेंस्टाइन का सफर देखिए, सख्त लॉजिक से शुरू होकर मौन और रहस्यमय के सम्मान पर खत्म होता है। ये अपने आप में कितना गहरा विरोधाभास है।
हाँ,
शायद सबसे बड़ा संदेश यही है, अपनी सीमाओं को समझने से स्पष्टता मिलती है और जो कहा नहीं जा सकता उसका आदर करना जरूरी है। यह हमें बेवजह की बहसों से, गलत फहमियों से बचाकर एक तरह की, कह सकती हूँ, बौद्धिक शांति दे सकता है।
बिल्कुल, एक स्पष्टता भरी शांति।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।